بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء الحسنیٰ کے اس پروگرام میں آج ہم رؤوف الرحیم، رؤوف بالعباد اور رحیم الودود کے تین صفات کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. رؤوف کے معنی ہوتے ہیں اس ذات کے جو یا اس ہستی کے جو کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے آئے، مشکل سے نکالنے والی ہو، مشکل سے دور مشکلیں دور کرنے والی ذات ہو. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں مشکلیں آتی ہیں. ان کے معنی کیا ہے وہ سمجھیں گے ہم، اور رؤوف اور رحیم کے ساتھ مل کر کیا مطلب ہوتا ہے اور رحیم الودود کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو رؤوف کے معنی جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ مشکلیں دور کرنے والے، مشکلوں سے نکالنے والی ذات کو کہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کا نظام امتحان والا بنایا ہے تو ان امتحانات میں مشکلیں بھی رکھی ہیں، مشکلیں جان مال عزت اور کمائی میں اور بیماریوں میں کئی پہلوؤں سے رکھی ہے. جنگیں ہو جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، اس میں آدمی بالکل برباد ہو کے رہ جاتا ہے. بعض اوقات بیماریاں بڑی تکلیف دہ آ جاتی ہیں، جیسے کہ کینسر کی بیماری ہے یا اس طرح کی چیزیں. تو اس سارے کے اندر رؤوف پھر کیسے ہوئے اللہ تعالیٰ، جبکہ رؤوف کا معنی ہے مہربانی ان حالات میں جب آدمی کے اوپر مشقت آ رہی ہو. تو اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک اس طرح کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں میں ڈال کر مشکلوں اگلی مشکلوں سے بچاتے ہیں، چھوٹی مشکلوں میں ڈال کر بڑی مشکلوں سے بچاتے ہیں، دنیا کی آزمائشوں میں ڈال کر دوزخ کی آزمائش سے بچاتے ہیں، جو عذاب آنے والا ہے، دوزخ کی مصیبت سے بچاتے ہیں. یہ رؤوف ہونے کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں کندن بنانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے اندر کچھ اچھے اوصاف پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کے لیے ہمیں مشکلات سے گزارتے ہیں. تو رؤوف کے یہ پہلو کی نفی نہیں ہوتی جب ہم کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں. تو مصیبت میں پھنسے ہونا دراصل کسی بڑی مصیبت سے نکالنے کے لیے یا کوئی اعلیٰ وصف ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. رؤوف کے اندر چونکہ مشکل سے نکالنا ہے تو رحمت جس کا تقاضا کرے گی اسی کو مشکل سے نکالا جائے گا. رحمت تقاضا کیسے کرتی ہے؟ دنیا میں آزمائش کے اعتبار سے، آخرت میں اجر اور ثواب کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے. تو اب اگر مثال کے طور پر رحمت یہ چاہتی ہے کہ ایک آدمی کینسر کی بیماری سے گزر کر بڑی جنت حاصل کر لے جو کسی عام آدمی کو ملنے والی نہیں ہے، تو رحمت کا یہ تقاضا اسے کینسر جیسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس کینسر کی بیماری میں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عمل کرتے ہیں جس کو آپ سورہ البقرہ کی جو پہلی آیت یہاں کوٹ کی گئی ہے اس کی روشنی میں سمجھیں گے، تو وہ میں اس وقت تک ٹال دیتا ہوں. دوسری جو صفت یہاں پر آئی ہے ودود کی ہے. ودود کے معنی محبت کرنے والے کے ہیں، اور یہ بھی رؤوف کے ساتھ بھی آئی ہے، رحیم کے ساتھ آئی ہے. تو رحیم محبت خدا کی ان لوگوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرنے لگ جائے گا. تو خدا کی محبت ان کو حاصل ہوگی جو خدا کی رحمت کے تقاضے پورے کر دیں گے. تو اب دیکھیے سورہ البقرہ میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. یہ جس جگہ پہ آیت آئی ہے وہاں پہ کچھ سخت مطالبات ہیں دین کے. تو دین کے سخت مطالبات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں احکام دے رہا ہوں کہ تمہیں پرانے رسول کو کے ساتھ ساتھ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، اپنا دین، اپنی ملت چھوڑ کر دوسری ملت میں داخل ہونا ہے، یہ سارا کچھ آسان نہیں ہوتا. تو اس طرح کے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں یہ مشکلیں اس لیے نہیں ڈالتا کہ تمہارا ایمان ضائع کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مشکلات سے نکالنے والے مہربان ہیں، تو وہ ایمان ضائع کرنے والا کام نہیں کرتے ہیں. اب کینسر کی مثال جو میں دے رہا تھا اس کو لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کینسر میں آدمی کو جب مبتلا کرتے ہیں تو اس کا ایمان ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو بہت اعلیٰ جنت میں لے جانے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر مثال کے طور پر کینسر کی تکلیف اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ آدمی کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع، یعنی ایمان سے نکل جانے کے باوجود نکلا ہوا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اب اس کے بس سے باہر نکل گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پہلو ہے جو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں مشکلیں آئیں گی. مشکلیں اس طرح کی آئیں گی کہ بہت تکلیف دہ ہو جائیں گی، ناقابل برداشت ہو جائیں گی، لیکن وہ ایمان ضائع کرنے کی نوبت تک نہیں جائیں گی. इसका मतलब है कि जिस पर कैंसर की बीमारी आ रही है उसके बारे में अल्लाह ताला का इल्म ये है कि उसका ईमान ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रऊफ़ रहीम के अंदर ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि रऊफ़ अल्लाह ताला इस तरह के हैं कि अगर मुश्किल डालेंगे तो इस मुश्किल में नहीं डालेंगे कि ईमान ज़ाया कर दें, ये नहीं होगा। तो ईमान ज़ाया करना सबसे बड़ी मुश्किल है जिसमें अल्लाह ताला डाल देंगे, क्योंकि उसका नतीजा दोज़ख़ की सूरत में निकलने वाला है। तो अल्लाह ताला की जितनी आजमाइशें हैं वो ईमान को पुख्ता करने के लिए हैं, ईमान ज़ाया करने के लिए नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो मुश्किलें आती हैं वो खुदा की सिफत रऊफ़ के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो इसलिए हैं कि ईमान को मजबूत करें, आखिरत में हमारे दर्जात को बुलंद करें, इसलिए अल्लाह ताला हमारे ऊपर ये मुश्किलें दुनिया में डालते रहते हैं। अगर आसान सवाल हों तो नंबर भी कम होंगे, अगर मुश्किल सवाल होंगे तो नंबर भी ज़्यादा होंगे, तो इस असूल पर ये बात चलती है। उसके बाद सूरह तौबा को देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नबी सल्लम पर, मुहाजरीन पर और अनसार पर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, तौबा उनके कबूल की, उनके साथ नरमी की, और उनके ऊपर भी, उनके ऊपर जिन्होंने तंगी के मौके पर नबी सल्लम की पैरवी की इसके बाद कि उनके दिल तो आमादा हो चुके थे गड़बड़ करने को। तो अब अल्लाह ताला ने क्या कर रहे हैं, क्योंकि बताया कि मैं ईमान ज़ाया करने के लिए कोई मुश्किल नहीं भेजता, ये एक मुसीबत में लोगों के दिल बिल्कुल उचाट हो गए थे, वो ईमान से फिरने ही वाले थे, लेकिन फिर वो वापस आ गए। तो अब क्या हुआ कि मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी पूरी जद्दोजहद कर दी अपने ईमान पर कायम रहने की, पांव डगमगा गए थे, दिल आमादा हो गए थे गलती करने पर, तो फरमाया कि नहीं, फिर मैंने उनके इस वापस आने पर उनके ऊपर मेहरबानी की, क्योंकि मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ। तो रऊफ़ुर रहीम जो है वो आप देखिए कि जितनी भी मुश्किलात के मौके हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला जो है अपनी तरफ से कोई मदद भेज देते हैं, कोई सकीनत भेज देते हैं, कोई दिल के अंदर इत्मीनान भेज देते हैं, हौसले बढ़ा देते हैं, क्योंकि आदमी उसरत में बाज़ का पाँव फिसल जाते हैं। अगर वो पाँव फिसलने का मौका ऐसा है कि आदमी की हिम्मत से बाहर था तो फिर अल्लाह ताला मदद के लिए आ जाते हैं, और अगर हिम्मत के मुताबिक था और उसने जानते बूझते पाँव पीछे कर लिया, अब अल्लाह की मदद नहीं आएगी सिवाय इसके कि वो खुद आदमी वापस दोबारा पलट जाए। इसी तरह इस आयत में देखिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं तुम बेफिक्र ना रहो मुझसे, मैं जब चाहूँ तुम्हें पकड़ लूँ, अमन की हालत में पकड़ सकता हूँ, अंदेशे की हालत में पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं पकड़ता, यानी हर गुनाह पर मैं सज़ा क्यों नहीं देता, क्योंकि मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ। अगर हर गुनाह पर सज़ा मिलने, तो जो अल्लाह ताला की ये शफकत है कि वो हमें मौका देता है, मोहलत देता है तौबा करने की, वापस आ जाने की, तो उसकी रऊफ़ होने की वजह से इसने ये सारे मौके दिए हुए हैं। तो अगर ये मौके छीन लेगा, हर जुर्म पर सज़ा, उधर मैंने गलत किया, उधर थप्पड़ आ गया, उधर मैंने गलती की, उधर मौका आ गया, तो ये फिर अब खुदा की रहफत के ख़िलाफ़ है, रऊफ़ होने के ख़िलाफ़ है, कि उसने जो हमें मुश्किल में इम्तिहान एक मुश्किल डाला है तो उसमें इतनी मुश्किल ना हो जाए कि हम गलती ही ना कर सकें, नहीं गलती करें और फिर तौबा करने का मौका मिलना चाहिए। इस वजह से फरमाया कि मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ, इसलिए तुम्हें मौका देता रहता हूँ। इस तरह फरमाया कि इसी तरह की ये बात यहाँ पर कही गई है, ये सूरह नूर की, ये सूरह नहल की आयत थी और ये सूरह नूर की। इसमें यह फरमाया कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता, उसकी रहमत ना होती, तो वो तुम्हें ज़रूर सज़ा देता, लेकिन वो रऊफ़ुर रहीम है इसलिए सज़ाएँ टालता रहता है। असल में क़यामत वाले दिन जाके मामला होगा, लेकिन दुनिया में भी पकड़ सकता है, पकड़ता रहा है रसूलों के ज़माने में कौमों को, और हमें भी आगाह करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए पकड़ लेता है। तो वो इसलिए कि वो रऊफ़ है, हर बात पर नहीं पकड़ता, कुछ पर पकड़ता है, कुछ पर छोड़ देता है, कुछ मौक़ों पर पकड़ता है, कुछ मौक़ों पर छोड़ देता है, इसलिए कि वो रऊफ़ है, ताकि हमें पूरी आज़ादी हासिल हो नेकी करने की भी और बुराई करने की भी, ताकि हम खुद अपने जज्बे के साथ बुराई से निकल कर नेकी की तरफ बढ़ जाएं। सिर्फ दीन के बारे में अल्लाह ताला ने रऊफ़ होने का ख्याल नहीं रखा अपने, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी इस तरह से बनाई है कि उसमें भी अपने रऊफ़ होने का उसने पूरा ख्याल रखा है। जैसे फरमाया कि ये जो तुम्हारे जानवर हैं, तुम्हारा बोझ उठाकर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ले जाते हैं, तुम अगर लेकर खुद जाते अपने कंधों पर या अपने सर पर उठाकर, तो फरमाया कि बड़ी ही मुशक्क़त के साथ ऐसा करते, एक बड़ी मुशक्क़त में से गुज़रते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तुम्हारी मुशक्क़त हटाई है जानवर पैदा करके, बारबरदारी के जानवर जो हैं, घोड़ा, ऊँट, गधा वगैरह, इनको पैदा करके अल्लाह ताला ने हमारी मुशक्क़त क्यों हटाई है, क्योंकि वो रऊफ़ुर रहीम है। तो कायनात के निज़ाम में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो मसलन अब रेल कार आ गई, गाड़ी आ गई, जहाज़ आ गए, तो ये अल्लाह ही के दिए हुए कायदे के मुताबिक है, तो ये भी अल्लाह ताला के रऊफ़ और रहीम होने की वजह से एक सहूलत हमें हासिल है। चप्पल पहन लेना पाँव में जिसमें पत्थर ना पाँव को चुभें और कांटे ना चुभें, ये भी अल्लाह ताला की राहत है कि उसने ये मौका हमें दिया कि हम ये चीज़ बना लें। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन व आसमान को मुसख़र कर दिया है, तुम्हारे लिए किश्ती को भी मुसख़र कर दिया जो तुम्हारा सामान लेकर, उसी तरह जानवरों की ऊपर जो बात हुई है, तुम्हारा सामान लेकर अल्लाह के हुक्म से जाती है। ये हुक्म बहुत अहम है, यानी चूंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो हमने बनाई है, जानवर हमने नहीं बनाए और ज़मीन व आसमान हमने नहीं बनाए, लेकिन किश्ती हम बनाते हैं। तो फरमाया कि ये भी मेरे रऊफ़ होने की वजह से है कि क्योंकि मेरे हुक्म से ये चलती है। अगर मेरा हुक्म ना होता इसको कि अगर मेरा हुक्म इसको ना होता कि वो पानी पर तैर सके और सामान उठाकर भी चल सके पानी के ऊपर, तो वो ना चलती, तो तुम्हारे लिए मशक्क़त का बायस बनती, तो तुम खुद सामान उठाकर खुद अपने कंधों पर डालकर तैरते हुए जाते या कुछ करते, जहाँ दरिया पार करना ज़रूरी होता है या समंदर पार करना होता है। तो कश्तियों में जो तुम्हारे लिए मैंने अपने हुक्म से सहूलत रखी है, ये किस वजह से है? मेरे रऊफ़ और रहीम होने की वजह से है। इसी तरह फरमाया कि मैंने आसमान को भी थामे हुआ है कि कहीं तुम्हारे ऊपर गिर ना जाए, ऊपर से जो कॉमेट्स आते हैं, कोई इस तरह के सीराइड्स आते हैं, उनको रोका है अल्लाह ताला ने, ताकि वो हमें आकर तबाह ना कर दें। कुछ आते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन वो जब गिरते हैं, खुदा का जो फैसला होता है उसके मुताबिक गिरते हैं, लेकिन जितने ऊपर से बरस रहे हैं, अगर वो सारे के सारे हमारे ऊपर आकर गिरने लग जाएं, तो शायद ज़िंदगी पूरी ज़मीन पर तबाह हो जाए। तो वो जब जैसे ही मदार में दाखिल होते हैं ज़मीन के कुर्राए हवाई में, तो वो बिल्कुल टूट के बिखर जाते हैं। तो उसकी तरफ इशारा किया कि मैं आसमान को तुम्हारे ऊपर गिरने से भी रोके हुए हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ। तो सिर्फ दीन के एतबार से या नेकी और बदी में मामला राफत का नहीं है, रऊफ़ होने का नहीं है, बल्कि इस पहलू से भी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए मशक्क़तों को दूर करने वाला बनाया है ताकि हम उन मशक्क़तों से निकल जाएं। तो ये भी खुदा के रऊफ़ होने की वजह से हुआ है। हम अगर हमारे पास मालूमात ना हो, मिसाल के तौर पर हम किसी नए शहर में चले जाएं, हमें उसकी सड़कों का पता ना हो, इलाकों का पता ना हो, कोई निशानात भी सड़कों पर ना लगे हों, कोई साइन बोर्ड्स भी ना लगे हों, तो उस शहर में दाखिल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो इसको ज़ुलमात समझ लीजिए कि किसी चीज़ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अपने रसूलों के ज़रिए से इस कायनात में हमने कैसे रहना है, इस दुनिया में हमने कैसे जीना है, ये हमें पता नहीं होता। तो अल्लाह ताला अपने रसूलों के ज़रिए से हदायत भेजते हैं। उसको फरमाया है कि मैं ज़ुलमात से निकाल कर तुम्हें नूर की तरफ ले जाता हूँ अपनी आयात के ज़रिए से। तो अब किसी मुल्क में जब हम चले गए, पता ही नहीं कहाँ जाना है, ज़ुबान भी नहीं आती, तो अब क्या करेंगे? अब भूखे मर जाएंगे, भटक भटक के फिरते रहेंगे, कहीं पहुँच ही नहीं सकेंगे, ज़ुबान नहीं आती, उस इलाके से वाकफियत नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है। इस सूरत में अगर कोई अपना देसी आदमी मिल जाए तो खुदा की रहमत होगी। ठीक है, तो फरमाया कि इस दुनिया में तुमने कैसे रहना है? अंदर ज़मीर की आग लगी हुई है, शऊर पूरी तरह बेदार है, उसको पता है कि नेकी करनी है, बुराई नहीं करनी है, उसको पता है कि मैं इंसान हूँ, आजमाइश में डाला गया हूँ, और लेकिन पता नहीं चल रहा कि कैसे करना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं अपनी आयात नाजिल करके इस अंधेरे से निकाल कर तुम्हें रोशनी की तरफ ले आता हूँ। इसी तरह कुछ गुमराही में आदमी भटक रहा होता है, बताने वाला आकर बताता है कि भाई रास्ता इधर को है। तो ये खुदा की वो राहत है जो रसूलों के ज़रिए से हमें हासिल होती है, और ये भी रहमत के तकाजे से और रऊफ़ होने के तकाजे से खुदा की तरफ से हमें हासिल होती है। अब ये एक और पहलू से सहाबा की दुआ एक नकल हुई है। वो जितने भी सहाबी ईमान में दाखिल होते जाते हैं, वो अपने रब से कहते हैं कि हमारे रब हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं उनको भी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, और हमारे दिलों के अंदर जो गिल है एक दूसरे के साथ, कीना, दुश्मनी और नफ़रतें हैं, इसको साफ़ करते हैं। ऐ हमारे रब, क्योंकि आप रऊफ़ रहीम हैं। तो किसी मुआशरे में जब एक दूसरे से नफ़रतें हों, फासले हों, एक दूसरे को हम बुरा कह रहे हों, तो ये गिल जो है ये पसंदीदा नहीं है। इस ये भी एक मुश्किल पैदा कर देती है। दो भाई आपस में अगर गिल का शिकार हो जाएं, तो भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। तो जिस मुआशरे में, हमारे मुआशरे में ये बहुत बीमारी पाई जाती है, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। तो हम एक दूसरे से नफ़रत करने वाले जब हैं तो इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता, मिलकर कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किलों से निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो सहाबा ये दुआ करते थे कि हमारे अंदर से ये चीज़ दूर हो जाए। होता क्या था कि पहले वो एक दूसरे के दुश्मन थे, बदर में एक दूसरे को मारा हुआ है, और अब ईमान ले आए, अभी ईमान ले आए हैं, तो अब गिल ख़त्म होनी चाहिए। और दौरे जाहलियत में गिल होती भी बहुत ज़्यादा थी, छोटी सी बात पर पक्की दुश्मनी कायम हो जाती थी। तो सहाबा आपस में यह दुआ करते थे कि या अल्लाह हमारे बीच की ये मुश्किल दूर कर दें। क्यों? क्योंकि आप मुश्किलों से निकालने वाले हैं। तो गिल की मुश्किल, इसको गिल का भी यहाँ इस आयत से पता चल रहा है कि हमें गिल आपस में ख़त्म करनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक अगली आयत में रहीमुन वदूद की सिफत आई है। वदूद के मानी मोहब्बत करने वाले के हैं, और रहीम के मानी वही रहमत का जो पूरा मजमून हम समझ चुके हैं। तो इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह से, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, फिर उसकी तरफ पलटो। इस्तग़फ़ार करना, मग़फ़रत मांगना, गुनाहों की माफ़ी मांगना, और पलटना, सही रास्ते पर आ जाना, खुदा की तरफ वाले रास्ते पर। तो इसके बाद अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें हासिल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम और वदूद है। ये मज़मून मोहब्बत वाला पहले भी गुजर चुका है। इसी तरह वदूद की सिफत गफूर के साथ भी आई है कि मग़फ़रत का हकदार वो है जो खुदा की मोहब्बत को जीत लेगा, और खुदा की मोहब्बत के जीतने का अमल उस नेकी पर इस्तग़फ़ार और खुदा की तरफ रुजू में रखा गया है कि जो आदमी अपने गुनाह के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगे और फिर खुदा की तरफ अपना रुख सीधा कर ले, उसकी बात मानने लग जाए, उसकी इताअत और फरमाबरदारी में आ जाए, तो खुदा की रहमत और मोहब्बत उसको हासिल हो जाएगी। उसके बाद फरमाया कि वो लोग किन को मोहब्बत हासिल होगी, किन को अल्लाह ताला के रऊफ होने का समरा हासिल होगा, वो ये कि जो अपने आप को खुदा की मर्ज़ी तलाश करने के लिए बेच डाले, उसने इस मकसद के लिए अपने आप को खाली कर लिया कि अब मैंने खुदा की रज़ा चाहनी है। अब अगर उससे कोई कोताहियाँ होंगी तो, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि अल्लाह की राफत हासिल हो, अल्लाह की मर्ज़ी हासिल हो जाए, वो अल्लाह उसे राज़ी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर रऊफ़ोन बिलबाद हैं, गुनाहों से भी निकाल ले जाएंगे और मुश्किल से भी निकाल ले जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है कि जब जुलैखा ने पूरी तरह घेर लिया, वो उनके आका की बीवी है, सियासी इकतदार भी उसको हासिल है, पैसे वाली भी है, हज़रत यूसुफ़ उनके मुकाबले में ग़ुलाम है, ख़रीदा हुआ उनको, और वो बेबस हैं, लेकिन पता नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने मेरी बुरहान उसने देखी और वह दरवाजे की तरफ भाग पड़े। इस तरह से अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करते हैं अगर वो अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए हर वक्त तैयार हों। तो इसको रऊफ़ुन बिलइबाद के लफ्ज़ से बयान किया है कि मैं अपने बंदों को मुश्किल मौक़ों पर मदद करने के लिए आ जाता हूँ। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से डराते हैं, क्योंकि अल्लाह रऊफ़ुन बिलइबाद है। अल्लाह ताला अपने आप से तुम्हें आगाह करते हैं, होशियार करते हैं। मतलब क्या कि खुदा के इक़ाब से बचो, खुदा की सज़ा से बचो, खुदा के अदल से बचो जो क़यामत वाले दिन ज़ाहिर होना है। अगर तुम खुदा से बचने की कोशिश नहीं करोगे, उसके अजाबों से, उसकी सज़ा से, उसके क़यामत के फ़ैसलों से, तो मारे जाओगे। तो अल्लाह ताला तुम्हें आगाह कर रहा है अपने इस फ़ैसले से कि मैंने क़यामत बरपा करनी है, उससे आगाह कर रहा है। क्यों आगाह कर रहा है? दुनिया के अंदर, क्योंकि वो रऊफ़ुन बिलइबाद है। तो कुरान का नाजिल करना वैसा ही अमल है जैसा कि हज़रत यूसुफ़ का जुलैखा के कमरे में बुरहान नज़र आ जाना है। तो कुरान भी हमारे लिए बुरहान है, वो आके में बताता है कि बच जाओ इन चीज़ों से, ये नहीं करनी है, ये कबीरा गुनाह है, इनसे बच जाओ। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी सिफत रहमत की और राफत की वजह से हमारे साथ ये मामला किया है कि कुरान मजीद नाजिल किया, और ज़िंदगी में भी बहुत सारे अमूर इस तरह से रखे हैं। इसके साथ ही आज की हमारी गुफ्तगू मुकम्मल होती है। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।